देखिए क्या कह रहे हैं, नहीं ये तो एंड है, एंड में यहाँ इसके पहले परिच्छेद में, ना नहीं लास्ट में, लास्ट तो बाद में आएंगे, पहला परिच्छेद में फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसके नीचे लिखा है, देखो बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि ये छापो, तो अभी मैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दिस परंपरा के आधार पर मैंने इसको कृष्ण भावना को साउंडली एंड प्रोग्रेसिवली, आप इसको थोड़ा सा मूड देखिए, प्रीफेस का मूड प्रभुपाद का देखिए, प्रीफेस अमुख में पहले पहले देखिए प्रभुपाद लिखते कहते हैं क्या लिखा, जरा एक व्यक्ति पढ़े थोड़ा इसको, थोड़ा आपको और स्पष्ट हो जाएगा, आपको एक एक व्यक्ति कोई पढ़े जो हिंदी बहुत अच्छा पढ़ सकता है, अमुख का कौन पढ़ा है बेटा, आप पढ़ोगे, पढ़िए सबके पास पुस्तक तो है, हाँ बोलिए,
सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी,
इसी रूप में लिखी थी, इसका मतलब जो अभी आपके हाथ में इसी रूप में लिखी थी, ठीक है आगे पढ़िए फिर,
जिस रूप में भव्य समझा रही है,
हाँ हाँ,
दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, इससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी, मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में नित्यांतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है, इससे कृति प्रामाणिक तथा विवस्थापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ
उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अब कोई नहीं कह सकता कि ये शब्द क्यों क्यों लिखा है प्रभुपाद ने अपनी मर्जी से, ये तो मूल संस्कृत में इसका ये अर्थ है, तो प्रभुपाद अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते कि मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे भगवान ने कहा है वैसे का वैसे, उसी को वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, उसी का अर्थ लिखना चाह रहा हूँ। आप देखिए इसमें प्रभुपाद अपने ऊपर श्रेय नहीं देंगे, वो आगे आएगा, पहले इसका लास्ट पार्ट पढ़िए, हाँ ये पूरा किया, आगे चलिए इसी में,
जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी,
यहाँ एक मिनट, मुझे प्रसन्नता नहीं हुई, इसका अर्थ है कि हम यहाँ क्यों हैं इस काल में, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, आप इसको एकदम वैसे दूसरे, हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, इसलिए हमको कैसे पढ़ना चाहिए, जो चीज प्रभुपाद को प्रसन्न करती है, तो प्रभुपाद को प्रसन्नता किस बात में है कि हर श्लोक उसके एक शब्द का अर्थ उसको ठीक तरह से हम समझ के फिर करें, तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती प्रभुपाद लिखा है, लेकिन हमारे लिए ये इसका अर्थ है कि प्रभुपाद की प्रसन्नता इसमें है कि हम भगवद गीता को जैसे प्रभुपाद चाहते थे वैसे पढ़ें, ठीक है,
किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं, अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत
आज पूर्ण परंपरागत व्याकरण अपने ऊपर नहीं लिया प्रभुपाद आए हुए, मैंने लिखी ऐसे नहीं कह रहे, देखो परंपरागत व्याख्या की गई, इसका मतलब जब भी हमको कहीं बोलना है तो हमारे पीछे परंपरा है, आप अकेले नहीं हो, आप जब भी कहीं कहीं बोलते हो तो आप परंपरा के आधार के ऊपर बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने परंपरा की भगवद गीता बताई, आप छोटे हो सकते हो, नए भक्त हो सकते हो, लेकिन भगवद गीता यथारूप पढ़ते हो तो आप समझ लो कि पूरी परंपरा आपके मुख से दुनिया के साथ बात कर रही, तो आप अकेले नहीं हो, इसलिए प्रभुपाद जहां भी अवर लिखता है, हम लिखता है, मैं न करे हम लिखता है, हमका बड़ाई के लिए नहीं लिखता है, हमका मतलब हम सब मतलब परंपरागत, हमका मतलब हम सब परंपरा के गत, तो इसका अर्थ ये है कि ये परंपरा बोल रही है इसमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद ये नहीं कहते मैंने लिखा है, देखिए क्या परंपरागत, ये परंपरा शब्द को बहुत महत्वपूर्ण दिया, हाँ जी, अच्छा अब दो बातें लिखी है प्रभुपाद ने, एक तो हरे कृष्ण आंदोलन की प्रगति आगे, एक तो प्रतिष्ठा, हाँ क्या साउंडली एंड प्रोग्रेसिवली, क्या दो शब्दों का अर्थ क्या लिखा है,
प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना,
पुष्ट स्थापना साउंडली पुष्ट स्थापना, पुष्ट स्थापना का मतलब ये है कि ये हिल नहीं सकती, 10,000 साल तक इस भगवत गीता की शिक्षाओं को इस भूतल पर रहना है, तो 10,000 साल तक कोई बिल्डिंग कैसे रह सकती है, कोई रह सकती है, जब उसका बहुत अच्छी तरह से वो किया जाए फाउंडेशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीम अच्छी होगी तब ना। तो अब नीम किसके ऊपर रखिए, भगवान के शब्दों के ऊपर नीम रखिए। तो भगवान के शब्दों के ऊपर नीम रखिए तो 5000 साल पुराना भगवत गीता अभी तक, 5000 साल पहले भगवान ने कहा ना, अभी भी तो सब दुनिया मान रही है ना। तो अगर उसी रूप में रखी जाए 10000 साल आगे भी तो चलेगी ना। तो फाउंड्री का मतलब जो ये भगवत गीता प्रभुपाद की मैं यथा रूप दे रहा हूं, इसका जो फाउंडेशन है, इसकी नींव है, वो कितनी साउंड फुटिंग पे है। क्या हिंदी में शब्द साउंड के लिए? बहुत पुष्ट है इसका, इतना पुष्ट है। और दूसरा क्या है? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। प्रगतिशील का अर्थ है कि ये प्रचार के लिए लिखी गई है, पढ़ के सोने के लिए नहीं लिखी गई है, मरने वाले के पीछे पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई है कि आदमी मर जाएगा तो उसके पास पढ़े, उसके लिए नहीं है। प्रगतिशील का मतलब है कि ये लिखी इसलिए गई है कि इसको लेकर आप आगे बढ़ो और दूसरों को इसका संदेश देते चलो। प्रोग्रेसिव का भाव ये है प्रभुपाद का। पहले तो स्थापना इसकी बहुत दृढ़ता के साथ की गई है कि इसको कोई हिला नहीं सकता है, और फिर हम जैसे आगे जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें रुकावट भी कोई नहीं आएगी। इसके बाद दूसरे, अभी दूसरा परिच्छेद आ रहा है, इसके बाद दूसरा परिच्छेद, उसके पहले दो लाइन से पढ़े। चार चीजें हैं इसमें।
हमारा
प्रभुपाद ने लिखा है, इसका मतलब हम सबका। प्रभुपाद जब हमारा लिखते हैं, इसका मतलब हम सबका। किससे? भगवान श्री कृष्ण से लेकर चेतना महाप्रभु से लेकर छठ गोस्वामी से लेकर हम सबका। हम का कहने का परिभाषा ये है, हमारा कृष्ण। जब हम हमारा कहेंगे तो वो जो लोग सामने बैठे हैं प्रवचन कहें तो कुछ बोलो हमारे में आप भी आ गए, ऐसे उसको कहना पड़ेगा हमारा। हम जब हम कहेंगे हमारा तो लोग कहेंगे तुम्हारा है, तो हम क्या करें इसको। ये लोगों की जो लोगों की भावना ऐसी होती है, अगर मैं कहूंगा हमारा है तो वो कहेंगे भाई तुम्हारा तुम्हारे पास रखो। तो हमारे का मतलब है भगवान हमारा है, ये भगवान का है तो भगवान आपका भी है, तो ये आपका भी है। तो ये आंदोलन आप सबके लिए है, हम सबका है मतलब आप भी हमारे अंतर्गत आते हो। अब इसके पीछे चार शब्द लिखे हैं। हाँ, हमारा ये हरे कृष्ण आंदोलन, कृष्ण भावना आंदोलन,
मौलिक ऐतिहासिक
मौलिक के लिए अंग्रेजी में लिखा है, जेन्युइन, जेन्युइन है। जेन्युइन जेन्युइन किसको बोलते हैं? जेन्युइन पार्ट और नकली होता है, एक होता है असली एक नकली। जेन्युइन है ना, कभी कहते हैं भाई ये असली, ये असली है, जेन्युइन है, और ये जल असली नहीं है, ये कुछ मेड इन लोकल है किसी का। तो ये हमारा हरे कृष्ण आंदोलन जेन्युइन है। आंदोलन हमारा कैसा है? जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब सत्य के ऊपर आधारित है, इसमें कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं की गई है, अपनी इच्छा को कुछ प्रकट। एक तो ये मौलिक है, सत्य के ऊपर स्थापित है, और दूसरा क्या है? ऐतिहासिक ऑथेंटिसिटी, हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी। ये ऐसे नहीं है कि भाई कहीं रात को मुझे ख्याल आया और मैंने कहा कि मैं एक धर्म चला रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप इतिहास में जाओगे तो महाभारत का इतिहास मिलेगा। महाभारत के इतिहास में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता अर्जुन को दे बता रहे हैं, वो आपको हमको मिलेगा। तो ये इतिहास पूरी दुनिया जानती है। तो हमारा कृष्ण भावना आंदोलन ऐतिहासिक है, ये इतिहास भारत के सनातन धर्म के इतिहास। अच्छा, दो शब्द यहां सुन लीजिए, दो शब्द होते हैं कि इतिहास, एक पुराण, एक पुराण होता है जैसे भागवत पुराण है, महाभारत इतिहास है। महाभारत को इतिहास कहते हैं और भागवत को पुराण कहते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? इतिहास में सिर्फ जो घटनाएं घटी हैं वो ही दी जाती हैं, जैसे कि वह जैसे कि तैसे, लेकिन पुराण में उन घटनाओं के आधार के ऊपर जो शिक्षा होती है वो भी दी जाती है। घटना तो बताएंगे लेकिन उसमें शिक्षा क्या है हमारे लिए, वो शिक्षा की पद्धति भी पुराण में होती है। और इतिहास जैसे हमारे पास महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास में आती है। तो ये इतिहास जो होते हैं वो किसी विशेष समय में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसमें भगवान के भक्तों के द्वारा कुछ जो भी क्रियाकलाप हुए हैं उनको लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के पन्नों में भगवत गीता के ऊपर इसका इतिहास के पन्नों में स्थापित है। क्यों है वो प्रभुपाद आखिर में कहेंगे। तो एक ये ऐतिहासिक है और ऑथेंटिक है। फिर तीसरा शब्द क्या है?
सहज तथा दिव्य है।
हाँ,
सहज तथा दिव्य,
सहज नेचुरल। अब नेचुरल क्यों कह दिया कि भाई कृष्ण भावना नेचुरल क्यों है? नेचुरल माने, नेचुरल मतलब आपका स्वाभाविक है। सहज शब्द ठीक नहीं है। देखे सहज शब्द ना, इसके इसके नीचे कोई एक व्यक्ति रखे, क्योंकि हम पढ़ते हैं जब हिंदी तो हम देखते हैं कि कुछ शब्द अंग्रेजी से एग्जैक्टली वो नहीं मिलते। नेचुरल का मतलब स्वाभाविक है, सहज नहीं है। सहज का मतलब क्या होता है? आसानी से होने जमानी चीज। स्वभाव का मतलब जो हमारा स्वभाव है। तो ये कृष्ण भावना स्वाभाविक है, मतलब ये है क्या? इसका अर्थ क्या स्वाभाविक है? इसका मतलब क्या? ये नेचुरल, अंग्रेजी में नेचुरल है, इसका स्वाभाविक हो गया। तो इसका अर्थ क्या? कृष्ण भावना स्वाभाविक, इसका मतलब कोई भी कर सकता है इसको। इसमें किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है। जैसे वेद पढ़ने के लिए केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है, यज्ञ कोई करना है तो कोई विशेष ही जाति वाला कर सकता है, कोई करा सकता है। लेकिन स्वाभाविक का मतलब सबके लिए प्रैक्टिकल, जो सब कर, जैसे खाना मुंह से खाना सबके लिए स्वाभाविक है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ब्राह्मण खान से खाता है, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता है ना। स्वाभाविक का मतलब जो सब कर सकते हो, जो सबके लिए प्राकृतिक हो, जिसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता है। तो कृष्ण भावना स्वाभाविक है, नेचुरल है। स्वाभाविक का हम जब अर्थ करेंगे तो अर्थ क्या आएगा? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये हमारी असली स्थिति का, ये हमारा असली धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो जीव का धर्म है, सेवा और प्रेम करना, ये उसके ऊपर आधारित है। इसलिए ये स्वाभाविक है। जीव का क्या धर्म है? प्रेम करना और सेवा करना। जीव का धर्म ही ये, जीव का धर्म है सेवा और प्रेम करना। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो सेवा और प्रेम से वंचित हो। चाहे पशु को देखो तो भी गाय बछड़े को चाटती है, प्रेम करती है ना। चिड़िया दाना लेकर चूंच में आके अपने बच्चे को खिलाती है, सेवा करती है ना। चाहे कोई भी दुनिया का मजहब ले लो, लेकिन सब में सेवा तो करनी पड़ेगी, किसी ना किसी से प्रेम तो करना पड़ेगा। कोई आदमी प्रेम और सेवा से खाली तो दुनिया में हो नहीं सकता। हमको सेवा करनी पड़ रही है, भगवान की सेवा करें अथवा किसी और चीज की सेवा करनी पड़ेगी। जो भगवान से हटके होगी सेवा, वो माया की सेवा है, वो तो चाहे किसी भी नाम से हो। तो सेवा से तो कोई रह नहीं सकता। कोई तो पता पाउपा दिखा करते भाई कुछ सेवा करने के लिए नहीं है, लोगों के लिए तो कुत्ता बिल्ली पालते हैं उसकी सेवा करते हैं। तो सेवा तो करनी पड़ेगी, रह नहीं सकता प्रेम करने से कोई खाली। तो प्रेम हमारा स्वाभाविक धर्म है, और ये सनातन तब हो सकता है जब ये प्रेम और सेवा सनातन पुरुष के साथ जुड़े। सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण सनातन है, हम सनातन जीव हैं। जब हम सनातन सेवा और सनातन प्रेम सनातन पुरुष के साथ करेंगे तो उसको स्वाभाविक बोला जाता है, वो नेचुरल है। प्रभुपाद के जो प्रीफेस, इसके प्रीफेस के बाद जो आएगा इंट्रोडक्शन आएगा ना, उसमें ये प्रभुपाद पूरी शैली लिखी है, सनातन पुरुष, सनातन सेवा, सनातन जीव, सनातन प्रेम, इससे करेगा उसको सनातन कहते हैं। और सनातन जब शब्द भगवान प्रभुपाद के मुख पे आया, तो आपके जब सनातन शब्द आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में एकदम क्या आता है? सनातन गोस्वामी आएगा। सनातन आते थे ना प्रभुपाद, एकदम लिखते सनातन गोस्वामी ने जाके वहां पर घुस भरे, अमी के मैं कौन, मैं कौन, तो मैं जीव। तो प्रभुपाद उस सनातन को ऐसे उसके साथ जोड़ा है। हम पढ़ेंगे जब प्रीफेस में आगे तो ऐसे आएगा। तो ये स्वाभाविक है, कृष्ण भावना नेचुरल है। कोई कहेगा कि ये हम नहीं अपना सकते, इसका मतलब वो बीमार है, वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है। अब समझे, इसका अर्थ ये हो गया कि ये नेचुरल है, जो इसको अपना रहा है वो तो बिल्कुल अपने स्वभाव में स्थित है। जो नहीं अपना सकता, इसका मतलब वो क्या? अननेचुरल है। अननेचुरल का मतलब ये को नेचर के साथ जी नहीं सकता है। जैसे प्राय लोग, नेचर क्या है? सुबह सवेरे सूरज उगने से पहले उठना, ये नेचर है, ये स्वभाव है। जब सूर्य उगता है उससे पहले सबको, पक्षी भी, गधा भी उठता है सवेरे, देखा है आपने? गधा भी सोया हुआ आपको नहीं मिलेगा सूर्य उगने के बाद, लेकिन आदमी सोया हुआ है, गधे से गया हुआ कि नहीं? तो ये नेचुरल नहीं हुआ ना, ये अननेचुरल हो गया। और उसके साथ जो पहले उठते हैं वो नेचुरल हो गया। तो नहीं, ये कृष्ण भावना नेचुरल है, कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब वो बीमार है, वो रोगी है, वो अपने स्वभाव में नहीं। अब चौथी चीज क्या है? ये ट्रांसेंडेंटल है। क्या लिखा है? दिव्य है। क्या? कृष्ण भावना अमृत संघ दिव्य है। अब ये चार चीजें प्रभुपाद लिखे, पर क्यों है दिव्य? मौलिक क्यों है? इतिहास के ऊपर आधारित क्यों है और ये स्वाभाविक क्यों है और ये दिव्य क्यों है। देख ली लास्ट लाइन देखे, क्योंकि ये भगवत गीता के ऊपर आधारित क्या है, देखो क्योंकि ये, अब इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण भावना आंदोलन जिसके अंतर्गत हम जी रहे हैं, इसका आधार क्या है, भगवत गीता। ये भगवत गीता के ऊपर आधारित है। प्रभुपाद ने जब भी कहीं पब्लिक में बोला है हमेशा भगवत गीता के ऊपर बोला है। भक्तों के संग में भागवत बोला, भक्ति रसामृत सिंधु बोला, ठीक है, लेकिन पब्लिक में हमेशा भगवत गीता के ऊपर बोला, क्योंकि लोग भगवत गीता को सनातन भारतीय वैदिक संस्कृति का माननीय ग्रंथ मानते हैं। इसलिए हमारे लिए ये, इसलिए हम प्रीफेस आपके सामने आमुख पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद का मूड समझ में आना चाहिए कि भगवत गीता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण। केवल 700 श्लोक है भगवत गीता में, और विशेष रूप से देखेंगे तो एक एक श्लोक में कोई 10-12 शब्द होंगे मिला के, और हमारी जीवन 20-25 साल संस्था में हो जाने के बाद भी ये सब श्लोक और उनके अर्थ हम याद नहीं कर पाते हैं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ये हमारा बेस है, ये हमारी फाउंडेशन है, हमारी संस्था इसके ऊपर आधारित है, इसलिए ये तो हमारे रग रग में समाया होना चाहिए। ये कोई एक शब्द कह दे किसी श्लोक का, कोई एक शब्द उच्चारण करना चाहूं ना शक्नोति यह, तो पीछे वाला हमको एकदम आना चाहिए चोरुम प्राक शरीर विमोक्षणार्थ, तो ऐसे चला जाना चाहिए जैसे जैसे आप टेप का बटन जैसे दबा दे ना अपने आप चालू हो जाता है, ऐसे भगवत गीता कहीं भी हाथ लगाओ वहां से चालू हो जाना चाहिए, ऐसे हमको आनी चाहिए। ये हमारे को अभ्यास ऐसा करना, ये मूल प्रभुपाद जी का है कि मैंने इसलिए शब्द अर्थ निकाले, जरूरत क्या थी इसकी। अब ये पढ़ने के बाद आप दूसरे तरफ आइए, इसके पीछे पेज पे जाइए जहां प्रभुपाद कहते हैं मेरे को ये लोग कहते हैं आपने अमेरिका में आके कृष्ण भावना अमृत का स्थापना की बहुत अच्छा है। देखिए दूसरे पेज में, अब पीछे दूसरे पेज में जाइए, और इतना दूर नहीं, जैसे ये जो अभी परिच्छेद चल रहा है ना जिसका हमने कहा कृष्ण भावना ये भगवत गीता के ऊपर आधारित है, इसकी 7-8 लाइन छोड़ के फिर देखिए। अब कोई अमेरिकन ने मुझे कहा, मेरे शिष्यों के पिताजी आए, उनके दादाजी आए, बोला बड़ी कृपा की है आपने अमेरिका में कृष्ण भावना की स्थापना की है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ प्रभुपाद को श्रेय मिल रहा है ना, आपने बहुत कमाल किया अमेरिका के अंदर कृष्ण भावना की स्थापित की। अब प्रभुपाद लिख क्या रहे हैं देखो कि मैंने नहीं स्थापना की, इसका आदि पिता कृष्ण है। देखो प्रभुपाद एकदम कितना अपने आप को निम्र बना के स्थापित कर रहे हैं। देखो ये मूड देखो इसका प्रभुपाद का, देखिए क्या लिखा, हाँ आदि प्रवर्तक, यहाँ तो लिखा है अंग्रेजी में लिखा है फादर, बट एक्चुअली द ओरिजिनल फादर ऑफ दिस मूवमेंट इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, बट द ओरिजिनली द फादर ऑफ दिस मूवमेंट, कृष्ण भावना अमृत संघ का जो 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 कहा जाए जैसे आदि पिता जिसके द्वारा ये शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता है प्रभुपाद अपना श्रेय ले रहे हैं, मैंने अमेरिका ये पहले तो दिया श्री कृष्ण को, अपने ऊपर नहीं दिया। अब इसके पीछे थोड़ा और देखिए क्या कहते
हैं, यदि इसका चिंतित मात्र से श्रेय है तो वह मुझे नहीं अभितु मेरे गुरु श्री कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस प्रगटाचार्य
के। अब देखिए प्रभुपाद ने एकदम श्रेय किसको दिया, अपने गुरु जी ने दिया, कृष्ण और गुरु को श्रेय दिया। इसका उद्देश्य क्या है, हमारे भगवत गीता के अध्ययन करने का उद्देश्य है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। हमारे भगवत गीता के अध्ययन करने का उद्देश्य है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। देख कितना प्रभुपाद हम्बुल, अपने आप को कुछ भी न कहकर श्रेय, और हमारा दुनिया के अंदर क्या है, मैंने किया देखो ना, हम अपने आप कहने के लिए कितना प्रयास करते हैं और इतना सब करने के बाद भी ये इस जीव में ऊपर प्रभुपाद बैठे थे, ये नया जो क्वार्टर प्रभुपाद गया ना मतलब ऊपर, अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था तो पहला एक आदमी आया प्रभुपाद, उस वक्त इंदिरा गांधी के पास भी इतना बहुत सुंदर नहीं रहने के लिए जगह होगी, वो प्राइम मिनिस्टर इतना सुंदर उस वक्त में जो टीक वुड का काम अंदर किया हुआ है। दूसरे का प्रभुपाद ये तो बहुत अच्छा है, प्रभुपाद ने कहा मैं अपने साथ ले जाऊंगा क्या प्रभुपाद का। उसके बाद प्रभुपाद 7-8 महीने मुश्किल से रहे, पर क्या मैं ये साथ ले जाऊंगा, ये तो आप लोगों के लिए है, ये तो आप लोगों के लिए है, मैं तो साथ नहीं ले जाऊंगा इसको। तो सब कुछ करने के बाद भी त्याग की वृत्ति नहीं होगी तो आध्यात्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। सब कुछ करना है लेकिन त्याग की वृत्ति को साथ में लेके चलना है। तो प्रभुपाद एकदम लिखते हुए प्रीफेस, अभी तो आमुख चल रहा है, भगवद गीता शुरू नहीं हुई है, लेकिन श्रेय नहीं ले रहे हैं। श्रेय किसको दे रहे? भगवान श्री कृष्ण का ये आंदोलन है और मेरे ऊपर कृपा गुरु महाराज जी है कि मैं उसको यहां तक, उनकी चीज को यहां आपको लाके दे दी। तो ये हमारा मूड ये होना चाहिए, कहीं भी प्रचार करने जाते हैं तो दो चीजों को प्रसन्न करना, गुरु और कृष्ण को, और तीसरा होता है हरि गुरु वैष्णव। ये महाप्रभु ने तीसरा शब्द ऐड किया है, हरि गुरु वैष्णव, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, वैष्णव समाज में भगवान और गुरु को प्रसन्नता के लिए, हमारा अध्ययन इसके लिए है, हमारा सोना इसके लिए है, हमारा खाना इसके लिए है, हमारा चलना इसके लिए, हमारा जीवन है इन तीन कामों के लिए, ये हमारा दिमाग में बिल्कुल ठीक बैठना चाहिए। इसके बाद इस आमुख में एक चीज और है, ठीक है, इसके बाद दूसरा जो इसके बाद परिषद शुरू हो रहा है ना, उस परिषद में एक चीज प्रभुपाद लिखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का मिशन है, दिस भगवत गीता, आवर अटेम्प्ट इन प्रेजेंटिंग भगवत गीता एज इट इज टू प्रेजेंट द मिशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड एड कृष्ण। मिशन कहते हैं, मिशन स्टेटमेंट होती है हर एक की, मिशन किसको कहते हैं,
हरे
कृष्ण भागो हरे कृष्ण। क्या कह रहा हूँ बेटा, बात क्या कर रहे थे, मिशन किस हिंदी में क्या लिखा है मिशन को, आंदोलन संदेश लिखा, क्या लिखा है इसमें, ये देखो हमारा ये लिखा है, परंतु हमारा भगवत गीता यथा रूप, हमारा ये प्रयास भगवत गीता यथा रूप का क्या, श्री कृष्ण भगवान का, श्री कृष्ण का संदेश, मिशन को यहाँ संदेश लिखा है, लेकिन मिशन बहुत भारी शब्द होता है, किसी भी कंपनी में मिशन स्टेटमेंट पहले लिखी जाती है, हर एक कंपनी में काम करने वाले को मालूम होता है कि हम यहाँ क्यों है, मिशन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ हैं क्यों, मिशन स्टेटमेंट का अर्थ ये होता है कि हम यहाँ क्यों हैं। तो वो 3-4 लाइन में जो उद्देश्य होता है वो सारा उसके अंदर होता है। तो ये भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान का मिशन है, ये भगवान हमारा नहीं है मिशन, इसका जो उद्देश्य है जो भी शिक्षा है वो भगवान श्री कृष्ण भगवान का है। अब क्या है भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य, आप सोचिए एक मिनट, इसके नीचे थोड़ी देर में दिखाई देगा दूसरे दृष्टिकोण से, कृष्ण भगवान का मिशन क्या है, कोई पूछे तो आप कहते हैं आपका भगवत गीता यथारूप भगवान श्री कृष्ण का मिशन है, हाँ तो ये भगवत श्री कृष्ण का मिशन क्या है कोई पूछे तो, श्री कृष्ण का मिशन है मन मना भाव मत भक्तो। श्री कृष्ण भगवान का मिशन क्या है, कृष्ण भावना अमृतन का मिशन क्या है, मन मना भाव मत भक्तो। इसको 4 सूत्री प्रोग्राम कहते हैं, ये भगवत गीता का श्री कृष्ण का 4 सूत्री प्रोग्राम 4 pointed program 4 नुकाती है, 4 pointed program है। और इसके 2 लाइन पीछे लिखा हुआ है ये, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से लिखा है, लेकिन इस मिशन ये है, ये श्लोक 2 बार भगवत गीता में आवर्ती हुआ है, 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक ये है और 18वें अध्याय में फिर गुह्यतम ज्ञान आपको देता हूं तब ये श्लोक आता है, फिर सर्वधनवान परित्यज्य आता है, दोनों श्लोकों में सिर्फ आखिरी लाइन में थोड़ा अंतर है, ये 2 बार आया है। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण का मिशन है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता बनाई क्यों है, दी क्यों है, कि लोग भक्त बने, लोग कृष्ण भक्त बने, लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, ये इसका उद्देश्य है। ये मिशन ही है। तो ये क्या है भगवत गीता यथा रूप की मिशन, मन मना भव मद भक्तो मद्यादि नाम, मन कृष्ण में लगे हर समय, कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण को नमस्कार करें, कृष्ण की पूजा। मन नहीं लगता है तो क्या करो, बोलो भक्तों के संग भक्त बनो, तो भक्तों के संग में रहेंगे तो आपको उठा के लेके आएगा मंगल आरती में, तो मन लग जाएगा। पर भक्तों के संग में नहीं है तो कम से कम नमस्कार करो, नमस्कार नहीं हो सकते तो पूजा करो। तो ये चार एक दूसरे के साथ है लेकिन फल सबका एक ही है, लेकिन एक से थोड़ा साथ। तो ये मिशन है भगवद गीता की मिशन, कोई पूछे क्या है ये याद करना चाहिए। और ये गुह्यतम ज्ञान भी है, राज विद्या राज गुह्यम जो अध्याय है उसमें राज विद्या राज गुह्यम क्या है ये श्लोक, उसमें राज विद्या राज गुह्यम ये श्लोक है। तो ये गीता का मिशन ये है। अब गीता के मिशन के बाद आप थोड़ा सा आगे आमुख में देंगे देखेंगे मेरे ख्याल में दूसरा जो परिच्छेद शुरू होता है, अवर ओनली पर्पज टू प्रेजेंट दी भगवद गीता एज इट इज इन ऑर्डर टू गाइड दी कंडीशन स्टूडेंट टू दी सेम पर्पज फॉर विच कृष्णा डिसेंडेड। देखा, अब हम भगवद गीता के यथारूप उसी काम के लिए दे रहे हैं जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके आते हैं। और फिर प्रभुपाद सिर्फ बताना चाहते हैं कि कृष्ण तो ब्रह्मा के दिन में 8 अरब 60 करोड़ साल के बाद आते हैं, 8 अरब 60 करोड़ साल के बाद एक बार कृष्ण आते हैं, लेकिन उनका जो आने का उद्देश्य है वही उद्देश्य स्थापित करने के लिए भगवद गीता लिखी गई। तो कितना महत्वपूर्ण ये किताब शास्त्र हो गया, जो चीज 8 अरब 60 करोड़ साल के बाद लोगों को मिलती है, भगवान आके जो देते हैं काम, वही काम ये भगवद गीता करेगी। इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, भगवान की वाणी और भगवान अभिन्न है, भागवत और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। तो ये इसका ये इस ये परि ये जब ये पढ़ेंगे सेंटेंस, इसका अर्थ ये निकाल जाए भगवान, इसलिए भगवत गीता के को भी हमारा उतने ही सम्मान के साथ उतने ही आदर के साथ इसका सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का वही संदेश जो भगवान आते हैं तब देते हैं, वही संदेश देने के लिए भगवत गीता यथारूप लिखी गई है। तो ये मुख्य बात है कि भगवद गीता हमारे काय के लिए है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को यथारूप देने के लिए जो कई। और इसके बाद थोड़ा सा आगे चल के इसके बाद वाले दूसरे परिच्छेद में अब लास्ट वाला परिच्छेद है, उसमें एक और बहुत सुंदर शब्द है, उसको समझना है फिर ये हमारा अमुख पूरा होगा। अब ये परिषद दूसरा इसके बाद वाला भी छोड़ दीजिए, तीसरा वाला लीजिए। पीपल इन जनरल स्पेशली इन दिस एज ऑफ कली, हाँ सामान्यतः कलयुग के लोग इसको इस परिच्छेद में पढ़िए, इसमें एक विशेष बात है, वो तो आप जीवन में हमेशा अपने जीवन में लिख के रखनी है हमारे लिए, पढ़िए इसको।
कलयुग में सामान्य जनता की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है।
तो किसके ये जब कृष्ण की बाहरंगा शक्ति द्वारा मोहित है, तो जब भगवान कहते हैं भगवद गीता में ये कौन सा श्लोक है, ये तो बाद में सारे ही मेरी पूजा में लगे हुए हैं, कौन सा श्लोक है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्त तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वत्र, सारे ही मेरी पूजा में लगे हुए, चाहे मेरी करें या मेरी बाहरंग शक्ति के रखे, करे मेरी के रहे ना, वो भी तो मेरी शक्ति है ना, बाहरंग शक्ति की पूजा में लगे हुए हैं, वो भी है मेरी, लेकिन मुझे नहीं जानते इसलिए वहां कर रहे हैं। एक ये बात सिद्धांत के कोई चीज तो भगवान से अलग तो है नहीं संसार में, बाहरंग तो भी भगवान की शक्ति है इसलिए देवी इसको बोला गया है, लेकिन अब देखना यह है कि बाहरंग शक्ति की सेवा में लगे हुए हैं इसलिए वो उद्देश्य भूल रहे हैं जिसके लिए यहाँ आए हैं। तो ये अब ये एक शब्द को जब कहें तो दिमाग में ये आना चाहिए, कोई बात नहीं कहीं भी जाओगे तो जाना तो बाद में, भाई आसमान कितना भी उड़ो तो आसमान से बाहर तो नहीं जाते, और जगह है ही नहीं कहीं, एक लिमिट है वो, तो भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं संसार में। लेकिन भगवान के पास सीधा जाना वो बुद्धिमत्ता है। आप देखिए इसमें एक विशेष बात आएगी, वो आपको नोट करना है। भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी हो सकेगा। पूरा संसार इसी दौड़ में लगा हुआ है ना, यही दौड़ संसार में है ना। गाड़ी अच्छी हो जाएगी तो शायद हम सुखी हो जाएंगे, गाड़ी से जाने में 24 घंटे लगते हैं, जहाज में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, गर्मी हो जाएगी तो पंखे से काम नहीं चलेगा तो एसी लगाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो सारा केवल सुख का प्रयास किया जा रहा है बाहर अंग शक्ति के द्वारा। अपना पद निर्णय बता रहे हैं,
इससे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी
अत्यंत प्रबल है। यहाँ जो असीम कृष्ण प्रभु जी कह रहे थे अत्यंत प्रबल है, ये कहां से प्रभुपाद ने शब्द लिया? दैवीय गुणमयी मम माया दुरतया, ये दुरतया अत्यंत प्रबल है। ये आपके आपके जैसे आप चाहोगे वैसे नहीं करेंगी, इससे अपनी मर्जी चलेगी। प्रबल शब्द जहां है तो ये उसका अनुवाद है दुरतया। त्रिभय गुणमय भावे भी मोहितम जगत ना भी जाना थी, वो प्रबल है उससे आएंगे। इस तो भाव यहाँ देखिए प्रभुपाद जी का,
क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है।
प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, सब कोई स्वतंत्र नहीं है इस दुनिया में। कहते हैं स्वतंत्र, लेकिन एक भी स्वतंत्र नहीं है। किसी को रस्सी बंधी हुई तो नहीं देखती है ना, बाजार में घूम रहे सुबह सब दुकान की तरफ, कौन खींच के ले जाता है उसको, शाम को घर कौन खींच के लाता है? रस्सी बंधी हुई है ना, वो ऐसी आसक्ति की रस्सी बंधी हुई है संसार में इस माया वाली, कि वहीं जाएगा रोज तो वहां से वापस आएगा। ये कोलू की बेल की तरह घूमता है, समझता है बहुत कुछ किया लेकिन वहीं खड़ा है, वहीं जाता रोज उधर जाएगा रोज वापस आएगा। कौन ले जा रहा है? बंधा हुआ है ना आधार, कोई व्यक्ति स्वतंत्र है ही नहीं संसार में। और प्रभुपाद के स्पिरिचुअल फ्रीडम का फार्मूला किसी को मालूम नहीं है। प्रसाद लास्ट में बांट दीजिएगा, ये कह रहा है। अरे कृष्णा
मुझे आशीर्वाद दीजिए।
अरे कृष्णा आशीर्वाद दू प्रसाद दू, क्या बोले? मैं तुम्हारा अर्थ नहीं समझा। अर्थ क्या है तुम्हारा ये समझ में नहीं आया? आशीर्वाद प्रसाद और आशीर्वाद का अर्थ एक ही है। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा। तो अब थोड़ा आगे चलिए।
सौभाग्यवश भगवान का अंत रूप है, अतएव यह उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करते,
ये लाइन ये अंडरलाइन कर देना, ये आपके कॉपी में अंडरलाइन करना। मोहवश जीव भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों की द्वारा सुखी होना चाहता है, ये लाइन अंडरलाइन करने की बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बोलिए।
मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता।
कभी भी सुखी नहीं हो सकता, ये तो बो ब्लेंड कहते बोल्ड स्टेटमेंट, हो ही नहीं सकता है, खत्म। थोड़ा हो सकता है, बोलो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए थोड़ा सा।
अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय,
हाँ अब ये लाइन भी लाइन अंडरलाइन करना। ये देखो प्रभुपाद एक शब्द कहेंगे बहुत अच्छा है,
अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, यही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। भगवान यही चाहते हैं, इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना,
ये दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। प्रभुपाद देखा दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है? अपनी इंद्रियों की तुष्टि को छोड़कर कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करना, ये भगवत गीता का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ टीचिंग ऑफ भगवत गीता। ये अंडरलाइन कर दो, यहाँ ये सारी भगवत गीता का सार लिखा हुआ है। ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण जीवन में, एक ये सेंटेंस हमारे आंखों के सामने रोज रहेगा ना, कि हमारा जीवन कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, यही भगवत गीता का सार है, यही भगवत गीता का केंद्र बिंदु है। प्रभुपाद ने कहा इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता, केंद्र बिंदु ये, हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करके सुखी होना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन कैसे हो सकते हैं, कोई पूछे तो, तब प्रभुपाद कहें कृष्ण को इंद्र तृप्ति करने से सुखी हो जाओ, अपने से नहीं हो सकते हो, ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। ये अमोक की चीज आप अपने पास हमेशा लिख के रख दो, भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है, अपने स्वयं के इंद्रियों की तृप्ति न करके कृष्ण इंद्रियों की तृप्ति करना भगवत गीता का केंद्र बिंदु। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, इसको ठीक तरह से अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इसी के ऊपर मेडिटेट, इसी के ऊपर ध्यान सदा करते रहना चाहिए। मैं इस वक्त कर रहा हूं मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए करूंगा, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए, मैं ये प्रवचन दे रहा हूं किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये दूसरे के कानों में प्रसाद के रूप में जाएगा तो उसका उद्धार करेगा, लेकिन मैं इसलिए प्रवचन दे रहा हूं कि लोग कहे कि बहुत अच्छा प्रवचन देता है तो मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी, ये मेरे को सुखी नहीं करेगी, ये मेरे को अहंकार के द्वारा नीचे गिरा देगी। इसलिए प्रभुपाद अपने को एकदम पीछे हटा लिया, नहीं नहीं गुरु महाराज का है, भगवान का है, बहुत सावधानी से। अब लास्ट लाइन, एक एक लास्ट लाइन में प्रभुपाद कितने आशावादी है, कितना आशावादी है, देखिए उसमें लिखते हैं, एक भी व्यक्ति शुद्ध भक्त हो गया तो हम अपना कार्य सफल मानेंगे। देखिए अंतिम लाइन देखिए,
अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता ऐसा रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास सफल मानेंगे।
यहाँ लिखा है प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त, वहाँ इसलिए मैं बोलता हूँ कोई एक आदमी ऐसी गीता रखे जिसमें जहाँ जरूरत है वहां मार्क करे, कि हिंदी के अनुवाद में अंग्रेजी से बिल्कुल मिलता हुआ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। अब ये प्रभुपाद ने कहा है एक ही शुद्ध भक्त बन जाए, कितनी आशा, कितनी आशावादी। इसलिए ये नहीं मेरा किताब लाखों लोग भक्त बन जाएंगे, ये नहीं कह रहे, एक ही शुद्ध भक्त बन जाए तो भी कितने साल लगे होंगे प्रभुपाद को मानव अनुवाद लिखने में, कितना पढ़ा होगा तब ये लिखने के लिए उनको, कितने कितने जीवन का खून पसीना बहाया होगा तब ये समझ के लिखा होगा, और उसके बदले में मांगते क्या है, एक शुद्ध भक्त। कितने आशावादी हैं, और एक शुद्ध भक्त को प्रभुपाद कहते एक चांद करोड़ तारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि चांद में चांदनी रात होती है, और एक भक्त शुद्ध भक्त जब प्रभुपाद ने लिखा तो प्रभुपाद के मन के अंदर वो श्लोक भागवत का आएगा, उदगायंती नृत्यंती विलजा सुनाति भुवनम, पूरे भुवन भूमंडल को पवित्र करता है। एक भी शुद्ध भक्त ऐसा जो आनंद में मगन होके गाता है, नृत्य करता है, लज्जा को छोड़ के वो पूरे विश्व को, एक भक्त पूरे विश्व को पवित्र कर सकता है। और जब प्रभुपाद ने ये लिखा तो इसका मन में ये भी भाव होगा कि हमारे गुरु महाराज ने एक मेरे को यहां भेजा है तो इतने सारे लोगों का उद्धार हो गया, ऐसा एक और बन गया तो कितना बड़ा उद्धार हो सकता है। तो आशावादी होने के साथ बहुत बड़ा उनका अनुभव अपना बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त पूरे विश्व में इतना बड़ा आंदोलन स्थापित कर सका ना, तो ये तो ये कोई छोटी बात नहीं लिखी है। एक हिंदी का प्रवचन कभी आपने प्रभुपाद का सुना है, मैं अकेला 70 साल का बूढ़ा यहां से गया, पूरी दुनिया के लोग कृष्ण भावना में आना चाहते हैं, तुम पाकिस्तान के लिए रोता है, प्रभुपाद बंगाल में, तुम पाकिस्तान के लिए रोता है, हम पूरा पूरा दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। पर हम एक, हम अकेला गया और बूढ़ा गया, बुढ़िया वो बड़ी अवस्था में हम अकेला गया, बुढ़ापा में हम अकेला गया, तुम पाकिस्तान के लिए होता, यहाँ हिंदुस्तान ने क्लास तो यहाँ दिया था, तुम केवल पाकिस्तान के लिए होता, हम पूरा दुनिया को हिंदुस्तान बना देगा। इसका कहने का भाव ये है कि एक दो और शुद्ध भक्त बन जाए तो पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण भावना गली गली में पहुंच सकती है। तो हम सबके लिए आशा है कि हम शुद्ध भक्त बने, ये हमारे लिए होप है। प्रभुपाद हम सबको क्या और देख रहा है कि कौन मेरे इस चैलेंज को कबूल करता है। तो हम सबको डायरेक्ट चैलेंज प्रभुपाद दे रहे हैं, आप शुद्ध भक्त बनिए विश्व का उद्धार करने के लिए। तो हम सबके लिए प्रभुपाद आशा बांधे हुए बैठे हुए। तो ये आमुख पढ़ा पर तो हम हमेशा जाते हैं, लेकिन मूड देखना चाहिए कि इसमें कहने क्या चाहते हैं प्रभुपाद, ये हमारे लिए क्या संदेश है इसमें। हरे कृष्णा। तो ये हमने आज सिर्फ अमुख पढ़ा है हमारा, इसके बाद थोड़ा और कल एक अभ्यास करेंगे कि श्लोक कैसे पढ़ना चाहिए, उसको अध्ययन कैसे करना चाहिए। अभी समय है कि समाप्त हुआ है? एक 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 कोई भी श्लोक आप अपनी इच्छा से ले लो, उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जहां भी कोई एक निकाल के ले लो। वो तो फिर वो अध्ययन करेंगे तब, पहले एक कैसे अध्ययन करना चाहिए, एक अनुभव करते हैं कि ऐसे करने से कैसे लगता है। निकालो बेटा कोई किसी को, आप पढ़िए। चलो आप विषय विनिवर्तन पर नंबर कौन सा बता दो सबको। बाबा दो का 59 निकालो, 259 59 ओके। सबका निकल गया भैया, 58 56 7 8 9 हाँ जी हो गया। आइए विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवरजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब एक नजर इन शब्दों को, थोड़ा एक दो मिनट रुक के इन शब्दों को आप देख के सोचिए कि इसमें से कितने शब्द हैं जो आपकी अपनी भाषा में आपको समझ में आ रहे हैं। विषय तो सबको समझ में आता है, विषय विषय इंद्रियों के विषय। तो इंद्रियों के विषय क्या है, रूप रस गंध आदि, इसको विषय बोलते हैं। आंख के लिए देखना, कान के लिए सुनना। तो विषय शब्द जब आए सामने तो अब हमको समझना चाहिए इंद्रियों के विषय, ठीक है। अब विनिवर्तन्ते, हाँ वर्तन्ते विनिवर्तन्ते वर्तन्ते वर्तन्ते का मतलब क्या होता है, वर्तन करना किसी काम में का लगना। विनिवर्तन्ते विनिवर्तन्ते अब उसमें नहीं लगना है, उसको अपने आप को उससे रोकने का प्रयास करना। विनिवर्तन्ते का अर्थ ये हुआ कि विषयों में लगने से अपने आप को रोकने का प्रयास करना। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कहने का मेरा भाव ये है कि बोलने की भाषा दूसरी होती है, लिखने की भाषा दूसरी होती है। लिखने की भाषा पढ़ने के लिए होती है, बोलने की भाषा बोलने के लिए होती है। लिखने की भाषा शास्त्रीय होती है, बोलने की भाषा सामान्य होती है। प्रवचन में कहीं भी आप शास्त्रीय भाषा बोलेंगे तो लोग सो जाएंगे, आप सामान्य भाषा बोलेंगे तो लोग जागते रहेंगे, ये हम अनुभव से बता रहे हैं। इसलिए पहले शब्दों का अर्थ अपनी भाषा में समझो। अब विषय का सब अर्थ किसी को सोचने देखने की जरूरत नहीं है, विषय क्या है, विषय सबको समझ में आ रहा है। विनिवर्तन्ते का मतलब वर्तन करने से विशेष रूप से रोकना, विनिवर्तते अब निवृत्त करना है, कैसे निवृत्त करना, विशेष रूप से निवृत्त करना। वि का मतलब विशेष रूप से, विशेष रूप से निवृत्त करना, इसका मतलब एक होता है कि आज प्रसाद नहीं मिला इसलिए नहीं खा रहे, आज मिला ही नहीं, ये तो होया निवर्तते। एक विशेष निवर्तन का मतलब आज एकादशी नहीं खाएंगे, तो विशेष हमने पहले से दिमाग बना लिया, तो विशेष का मतलब पहले से संकल्प किया है कि मेरे को ऐसे नहीं करना। दोनों में अंतर है, वो भी नहीं मिला तो नहीं मिला तो भूखा ही है, लेकिन इसमें भूखा कहेंगे उसमें उपवास कहेंगे, तो दोनों का अर्थ अलग हो गया। तो विष्या विनिवर्तन्ते, अब इन दोनों शब्दों का आप दिमाग में बोल अपने से अच्छी तरह से बिठाओ, विषय किसको बोलेंगे, तो एक बार इस श्लोक के ऐसे देखो, फिर नीचे जाके शब्द अर्थ में देखो, दोनों को मिला विषय विनिवर्तन्ते, फिर क्या है निराहारस्य, इसका अर्थ भी तो आप सबको आता है ना, आहार खाने को बोलते हैं, निराहार का मतलब नहीं खाना, हाँ, और देही ना, देही ना मतलब आहार किसको चाहिए, देही को चाहिए ना, तो शरीर जिसको है तो शरीर को खाना न देकर जो इंद्रियों को रोकना चाहते हैं, इसका अर्थ ये होगा ना, हाँ, आपको देखने की जरूरत नहीं, अब अपने साधारण भाषा में बोलोगे तो दो दिन लाइनों का अर्थ क्या हुआ, शरीर को भोजन न देकर इंद्रियों को कमजोर करके विषयों से रोकने का प्रयास करना, यही हुआ ना इसका अर्थ। अब ये अर्थ आपको बिल्कुल सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अपने जीवन में उतारने इसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सामान्य जैसे हम बात करते हैं ऐसे लग रहा है ना ये, तो ये अब इन शब्दों को विषय विनिवर्तन से निराहारस्य देहिना, अब इन चार शब्दों का अर्थ आपको ढूंढने की जरूरत है क्या नीचे, नहीं है ना, अब इन चार का अर्थ देख ले, यही है कि नहीं, आपको ठीक तरह से को इसमें उसको कहीं ठीक तरह बिठाओ इसको, अब ये सरल लगता है क्योंकि आपकी भाषा में 80% शब्दों का अर्थ आपको आता है, आप सबको आता है, ये आपकी भाषा का है, फ्रॉम योर लैंग्वेज, और जो आपकी मातृभाषा है उसमें इसका अर्थ ले जाओ तब आपको इसका रस आएगा, नहीं तो रस नहीं आएगा, अपनी भाषा में जाओगे तब इसका रस आएगा। प्रार्थना भगवान को अपनी भाषा में करनी चाहिए, जो आपकी अपनी भाषा है, भगवान सब भाषाएं जानते हैं लेकिन आप अपनी भाषा में सही बोल सकते हो, अपने मन का भाव अपनी भाषा में केवल बोला जा सकता है। तो अब ये दो लाइन का अर्थ ठीक है, अब तीसरी लाइन क्या है, रसो वर्जम रसो अप्य अस्य, रसो वर्जम रसो अप्य अस्य, अस्य ए अस्य सब को पहले अस्य को ले लो, अस्य 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 का मतलब क्या, वो वाला, कौन सा वाला, जो खाना बंद करके बैठा है, अस्य मतलब जो आदमी ये काम कर रहा है उसके लिए अस्य, ये थोड़ा समझ नहीं, यस्य जिसका, अस्य जो कर रहा है, ये शब्द ऐसे हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे समझ में आएगा। रसो वर्जम, रसो वर्जम, वर्जम का मतलब क्या, त्यागना छोड़ना, वर्जित है ना, अप्य छोड़ने के बाद भी, रसो वर्जन अपि रस्य, रसो वर्जन रसो अपि अस्य, फिर भी उसका क्या रहे था उसमें, रस रस है, ये रस है, गुलाब जामुन का नाम अभी ले लें तो आपके मन में क्या आता है, उसके स्वाद का भाव आ जाता है ना खाने के बगैर भी, तो इसका मतलब उसके रस का, गुलाब जामुन नहीं है तो भी उसका रस तो आपके पास आ गया ना, चीज नहीं है फिर भी रस आ गया ना, तो रसो वर्जम, आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं उस चीज का रस नहीं खाऊंगा गुलाब जामुन का, लेकिन गुलाब जामुन का नाम आते ही आपके मुंह में रस का ध्यान आ ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकेंगे। तो दूसरा रस है उसका मतलब सेंस ऑफ एंजॉयमेंट अंग्रेजी में, कि भोग करने का जो अंदर में रस है वो तो रहेगा, आप छोड़ना चाहेंगे तो भी रहेगा, तो कैसे जाएगा वो, मानो अर्जुन पूछे भाई कैसे जाएगा भगवान से, तब भगवान क्या कहते हैं, परम दृष्ट्वा न निवर्तते, परम दृष्ट्वा, परम भगवान, परम किसको कहेंगे, भगवान को, दृष्ट्वा देख लिया, अगर भगवान को देख लिया उसमें हमको रस आने लगा तो फिर इंद्रियों के विषय के रस में हम नहीं जाएंगे। अगर हमको हरे कृष्ण मंत्र जपने में रस आ गया, अभी आया नहीं है, प्रभुपाद ने एक बार बुद्ध दिन बोला भक्तों को, बोला हमको हरे कृष्ण जपने से रस आ जाएगा, बोला हाँ आ जाएगा, और फिर बोला 30 साल से मैं भी जप रहा हूं, प्रभुपाद ने कहा 30 साल से मैं भी जप रहा हूं, इसका मतलब रस आने में समय लगेगा, लेकिन एक बार रस आ जाए तो रूप गोस्वामी कहता है एक जबान क्या है, तुंडा एक तुंड नहीं है, लाखों जबान हो तो कृष्ण केवल कृ कहने से और जबान चाहिए, इसका रस इतना है मैं पकड़ ले नहीं सकता हूं। एक कृ कहने से इतना रस उसका आता है, लेकिन उतना रस जब आए तब ना। परम दृष्टवा, परम परम का अर्थ तो सबको आता है ना, परम पुरुष भगवान परम, दृष्टवा हाँ दृष्टि दृष्टवा देखा, निवर्त क्या है फिर निवर्तते, निवृत्त हो जाएगा निवर्तते, निवृत्त होना, ये तो साधारण लोग कहते हैं मैं निवृत्त होने जा रहा हूं। निवृत्त होने कहां जाते हैं, सुबह सवेरे बाथरूम जाते हैं, निवृत्त होने जाते हैं, इसको आम भाषा में बोलता है निवृत्त होने जाना, जाते हैं ना शौचालय में सुबह सवेरे, उसको बोलता है निवृत्त होना, इसका मतलब पीछे कोई देखता है उसको, कोई नहीं देखता है ना, इसको बोलता है निवृत्त करने की वैसी दृष्टि, तो फिर दोबारा उसको देखने को कोई तैयार नहीं है और देखना नहीं चाहते हैं, एक कारण ये है, और दूसरा ये कारण है कि घुटने ठीक नहीं है बूढ़े लोगों के, इसलिए अंग्रेजी क्यों आ गए हैं कम उठ के, देखना कोई नहीं चाहता उसको। तो निवर्तते का भाव क्या हो गया, अगर भगवान को एक बार आपने उसके रस को चख लिया तो इस रस की ओर तुम देखोगे भी नहीं। कैसे, जब ये श्लोक पढ़ो तो आपके मन में एकदम जंप करके आना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा एक श्लोक उदाहरण उच्चारण किया करते थे तो कुलशेखर का, कृष्ण ये दूसरा ये नहीं वो, मैं जैसे ही इंद्रिय तृप्ति के भोग की इच्छा करता हूँ थूक देता हूँ उसके ऊपर, यमुना आचार्य का क्या है, पढ़ो पढ़ो सब पढ़ो, आपको ये श्लोक उस वक्त याद होना चाहिए जब ये श्लोक पढ़ते हो तब, ये है परम दृष्टवान निवर्तन्ते, कृष्ण के चरणों के रस जैसे नव नव मुझे आने लगा है। अरे तो विषयों का रस सबसे अच्छा है, नारी का संग है ना, उसका विचार आते उसके ऊपर मैं थूक देता, ये श्लोक जब ये श्लोक पढ़े ना तो एकदम वो श्लोक आपके दिमाग में ऐसे स्पार्क करना चाहिए, तब ये श्लोक बहुत क्लियर हो जाएगा। अब इस श्लोक में कुछ क्लियर करने की जरूरत पड़ती है, अब श्लोक क्लियर हो गया ना, तो ऐसे इसके एक एक शब्द को देखेंगे तो एकदम शब्द कोई अपने आप रूप धारण कर लेगा, इन शब्दों को रूप है अपना, वो शकिल धारण करेगा, जैसे कुलशेखर महाराज का शकिल धारण कर लिया इस शब्द ने, तो आपको वो दिखाई देगा कि ये श्लोक क्या कहना चाह रहा है, इसका उदाहरण क्या है, वो आपको दिखेगा। अब एक बार फिर श्लोक को पढ़िए, फिर इसके शब्दों के अर्थ को आप इसमें देखिए, अब हम अपना अर्थ करके देखो अपनी भाषा में इसका अर्थ, पहले मैं एक बार बोलता हूं फिर आप करने का प्रयास कर लीजिए। हाँ क्या शब्द है, विश्या विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिन, ये पहली लाइन है, रसो वर्जन रस अप्य अस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते, इंद्रियों के विषयों को शरीर को भोजन न देकर रोकने के प्रयास से उनके भोग का रस खत्म नहीं होता है, लेकिन एक बार भगवान का रस चख ले तो इस रस की ओर देखेगा भी नहीं। ये हुई साधारण आम भाषा में बोलना, इसको आप भी समझ सकते हो, बोल सकते हो और कह भी सकते हो, और सामने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, इसका अर्थ यही है। ठीक है, अब इसके शब्दों का अर्थ आप अपने पुस्तक में देख लो, कोई मुश्किल लग रहा है क्या आपको, नहीं लग रहा है ना, प्राय हम क्या एकदम शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं, उसमें हम मशीन की तरह पढ़ते हैं, कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए श्लोक हमारे मन में बैठता नहीं है, रस श्लोक में है, क्योंकि श्लोक भगवान श्री कृष्ण के वचन है, उसमें रस भरा हुआ है, वो जब तक खुलेगा नहीं तब तक हमको गीता पढ़ने में नींद आएगी। हम तो किसी के नहीं, हमने पूछा कि हमको रात को नींद नहीं आती है, दवाई लेनी पड़ती है, मैंने सरल रास्ता आपको बताऊंगा, क्या मैंने गीता का तुम रोज दूसरा अध्याय पूरा पढ़ लेना, तुम क्या तेरे घर वाले सब सो जाएंगे गोली लेने की कोई जरूरत नहीं। आपने देखा है कितने लोग पढ़ते पढ़ते छाती के ऊपर किताब गिरा हुआ देखता है ना सबको, तो ये तो नींद की गोली से सर्दी क्योंकि इसमें रस नहीं आएगा तो नींद आएगी। दो काम है, या रस आएगा या नींद आएगी। जिसको आनंद आता है वो सारी रात पढ़ेगा, नींद नहीं आएगी, और जिसको रस नहीं आता है उसको एक मिनट के बाद नींद आएगी। ये डबल एक्शन है गोली इसका बहुत बड़ा आनंद इसका दो पर। कभी हमसे किसी ने पूछा कि लोग आते हैं कभी हमें बहुत परेशान करते हैं, हम वहीं जाते हैं तो टाइम खराब करते हैं। मैं बोला एक रास्ता आपको बताते हैं आसानी से जान छुड़ाने का। बोला क्या? जब कोई आए बैठ जाए ना, बोला आपसे दो बातें करनी। बोला ठीक है, आप बैठिए, हम पांचवें अध्याय के सातवें श्लोक को थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। पांचवें अध्याय का सातवां श्लोक आप कहेंगे ना, किताब लेने जाए तब बोले थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ, आप बैठिए, आपकी जान छोड़ देगा। दुनिया से जान छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये भगवद गीता आपको यशोवर्जम रसो पे सारा इसके अंदर बहुत आसान है। अब इस श्लोक का अर्थ आप अपने आप अपनी बुद्धि से इसका अर्थ करके बताइए। पहले श्लोक पढ़िए, क्या नाम आपका? सुंदर रूपदास बोलिए। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते। विषय भोग को त्यागने के लिए भोजन शरीर को न देने का प्रयास करता है, फिर भी
परम रस को प्राप्त
कर। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिए, क्या लिखा है इसमें?
इंद्रिय भोग के भले ही निवृत्त हो सकता है, पर उसमें इंद्रिय भोग के भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है।
भक्ति में स्थिर हो जाता है, प्रभुपाद ने लिखा है इसके ऊपर कोई चर्चा इसमें कहां लिखेगा कि भक्ति कहां लिखी है इसमें, तो ये प्रश्न उठाएगा। इसलिए कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने, क्योंकि आगे चल के इसमें वो चीज आनी है भक्ति, तो उद्देश्य क्या है वो प्रभुपाद जी पहले स्थापित कर देते, ऐसे कुछ भावार्थों में लिखा हुआ है। यहां भक्ति शब्द प्रभुपाद ने किस चीज के लिए लिखा है? परम दृष्टवा। परम दृष्टवा का मतलब जब भक्ति में लगेगा तब भगवान के भगवान की सेवा और प्रेम का आनंद प्राप्त होगा, तब संसार के तुच्छ सुखों के आनंद को भूल सकता है। तो भक्ति शब्द प्रभुपाद ने परम दृष्टवा को भक्ति का भाव दिया है, कि केवल भक्ति के द्वारा। परम दृष्टवा मतलब भगवान की उच्च रस की तरफ जाना। उच्च रस कहाँ मिलता है? भक्ति के द्वारा मिलता है। भक्ति अपने आप में भक्ति रस प्रदान करती है, भक्ति रागात्मक है, रसमयी है, तो वो रस के लिए ये शब्द यहां दिया हुआ है। अब इसके भावार्थ में आप क्या समझते हैं इसके भावार्थ में हमको क्या मिलना चाहिए? प्रभुपाद का मूड, इसके भावार्थ हम पढ़ेंगे तो प्रभुपाद का मूड लगेगा। अब मूड क्या इसमें होना चाहिए? देखो प्रभुपाद, कभी प्रभुपाद को होता है कि शब्दों के ऊपर बोलना किसी एक शब्द, कभी ऐसे होता है मूड कि सारे लोग बदमाश जोग के नाम में इधर उधर कूदते हैं, लेकिन सब बदमाश हैं, सबकी इंद्रिय तृप्ति की भावना रहती है, असल चीज मानते नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद देखिए कि भावार्थ के अंदर प्रभुपाद का मूड कहाँ चला गया? अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। Unless one sense transcends, जब तक कोई परम दृष्टवा के स्तर के ऊपर नहीं पहुंचता है, भगवान के नाम रूप गुण और लीला में जब तक रस नहीं उसको आने लगता है, भगवान के गुण रूप नाम लीला अथवा भगवान के संबंधित शब्दों में जो चीजें उनमें जब तक रस नहीं आता है, तब तक वो संसार से रस से मुक्त हो ही नहीं सकता। ये एक स्टेटमेंट प्रभुपाद की बिल्कुल ऐसे के नहीं तो हो नहीं सकता, आप इसके लिए सोचो भी मत, ऐसे कहने का भाव है। तो वो ही केवल होगा तब आएगा। और फिर कहते हैं ये जो आप प्रयास कर रहे हो ना इंद्रिय भोग को रोकने का नियमित कभी बोलते हो ये तो ऐसे है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, अभी एग्जाम्पल है, एक देखिए, ये एक प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, ये तो ऐसे है जैसे खांसी किसी को हो तब बोलना तुम दही मत खाना, खटाई मत खाना, खांसी खत्म हो जाएगी फिर खटाई और दही खाने का मन करेगा। ये उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये जो इन लोगों का प्रयास है ये ऐसे है जैसे बीमार में किसी को डायबिटीज को बोलो तुम शुगर मत खाओ, भाई नहीं खाएगा लेकिन बोला सुई लगाऊंगा लेकिन खाऊंगा, तो वो छोड़ नहीं सकता है ना, उसका मन नहीं जाएगा। तो ये हाँ रेस्टिंग डिजीज वहां तो जो जो मरीज होता है इसलिए रोगी जो है वो एक तो ये चाहता नहीं है कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे, और चाहेगा ये खाना मेरा बंद नहीं हो तो ठीक है पहली बात, और दूसरा और उनके जो खाने का जो मंदिर में उसका जो स्वाद है वो तो जाता नहीं है मन से। वैसे ही अब देखो प्रभुपद का यहाँ कहा आक्रोश किसके ऊपर कर रहे हैं, अष्टांग योगा के ऊपर, क्योंकि उस वक्त जब प्रभुपद ये अमेरिका में थे तो चारों ओर से योगा के नाम पे लोगों को कहो आसन प्राणायाम का, जैसे आजकल यहाँ भरमार ऐसे हो रहा था, तो वहां प्रभुपद के अष्टांग योगा है लेकिन उसके अंदर यम है, नयम है, आत्म है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है। ये तो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए लिखा हुआ है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। चले ये आप याद करना भाई अष्टांग में कितने अंग लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखे हैं, एक कौन सा कम है। अष्टांग योगा के 7 अंग याद करने के लिए लिख लो, समाधि नहीं लिखा है ना, हाँ तो 8वां समाधि ये आप ऐड कर लो कोने में। अब आजकल का योगा है ना, आजकल देखो जो योग के नाम में हो रहा है उसमें दो ही चीजें हो रही है, क्या आसन प्राणायाम, लेकिन पहले यम नियम है उसके ऊपर तो है नहीं, किसी के पास नहीं है, 4-5 चीजें करनी है 5 नहीं करनी है। तो यम नियम नहीं है तो कोई नियम तो है नहीं, तो बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी, और बिल्डिंग खड़ी करें तो उसके उसका उद्देश्य क्या है बिल्डिंग के खड़ी करने का, कि अंदर कोई रहने वाला होना चाहिए ना। तो ध्यान धारणा समाधि भगवान को हृदय में लाना है ना, वो भी नहीं है। तो आसन और प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, शरीर थोड़ा हमारा फिट हो जाए, थोड़ा शरीर हमारा ठीक हो जाए, काय के लिए भोग करेंगे, यही ना। तो आजकल का योग भोग के लिए है ना, कि हम ठीक हो जाएं ताकि हम भोग ठीक तरह से कर सके, तो ये उद्देश्य तो नहीं है ना योग का, योग का उद्देश्य तो दूसरा है। तो ये प्रभुपाद जी ने बोला ये तो बच्चों के लिए है, बच्चों को कितना मने करो नहीं मानेंगे, वही काम वापस करने जाएंगे, ये जाके 2-3 प्राणायाम आसन करके फिर वापस आके सिगरेट पिएंगे, चाय पी के जाएंगे वापस आके सिगरेट पिएंगे, इसका क्या फर्क क्या पड़ता है इसी ऐसे योगा से, ऐसे योग का अर्थ क्या है। तो इसलिए एक तो ध्यान इसके अंदर आप समाधि लिख दिए तो यह अष्टांग योग आपको याद होना चाहिए, फिर भी किसी को यम और नियम के 5-5 भी याद होने चाहिए, 5 यम है 5 नियम है, किसी को नहीं याद है तो देख के रखना, प्रचार के लिए नाम आना चाहिए। यम नेम, नेम का मतलब क्या करना चाहिए, यम का मतलब यमराज जैसे दंड ऋषि होता है कि ये नहीं करना नहीं तो यम के पास जाओ, यम का मतलब नहीं करोगे तो यम के पास जाओगे, नेम का मतलब ये करोगे तो सुधर सकते हो, साधारण भाषा में बोलो ना, यम का मतलब यमराज के पास जाएगा नहीं करेगा मतलब मत करो ये काम, यम नेम अर्थ भी और है, यम का अर्थ दूसरा भले हो लेकिन ये अर्थ आपको आसानी से समझ में आएगा, यम मतलब जो नहीं करने की चीजें है, नेम मतलब जो करने की है, 5 यम है 5 नियम है। कल कोई इसके लिए कहीं से खोज करके निकाल के आएगा, लिख के आके बताना कल क्या है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी क्या कहें, फॉर लेस इंटेलिजेंट पर्सन हु हैव नो बेटर नॉलेज, जिसको अच्छी बुद्धि नहीं है उसके लिए ये है। आप देखिए, वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इन द कोर्स ऑफ हिज एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नो लॉन्गर हैज अ टेस्ट फॉर द डेड मटेरियल थिंग्स। कृष्ण भावना में आओगे तो सारे भौतिक इंद्र तृप्ति के विषयों में आपका भोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन तो अब ये श्लोक को अध्ययन करने का ये तरीका है कि थोड़ा टाइम श्लोक के शब्दों को अपने मन में अपनी भाषा में ठीक बिठाने का प्रयास करो, फिर कोई एक आधा शब्द, सब शब्द नहीं, एक आधा शब्द आपको थोड़ा सा ऐसे रोशनी दिखाएगा, अरे ये तो ऐसे होना चाहिए, कोई उदाहरण दिखेगा आपको, तो फिर वो श्लोक आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो अब ये श्लोक आपने अध्ययन किया, आपको कैसे लग रहा है? बहुत आसान हो गया, वैसे मुश्किल श्लोक है ये दूसरे अध्याय के सारे श्लोक मुश्किल है, उसमें से ये भी एक मुश्किल है, लेकिन ये श्लोक के ऊपर ये जो इन्होंने श्लोक दिया ना, ये आपको इसमें लिख दीजिए, जब भी श्लोक के ऊपर बोलना हो तो वो श्लोक आपका कोट करना बहुत जरूरी है। किसका? कुलशेखर का महाराज का ना, और यमुना आचार्य का, नवरस नव नवरस कृष्ण पदारविंद, कृष्ण पदारविंद नव नवरस। ये श्लोक एक ठीक तरह आएगा तो ये श्लोक बिल्कुल खुल जाता है कि नहीं, उसका बिल्कुल क्लियर हो गया श्लोक तो ठीक है। तो इस प्रकार से श्लोक को अध्ययन करने के लिए बाद में जाएंगे अंदर तो समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी कौन से शब्द को परिभाषा कर रहे हैं। शब्द तो श्लोक में बहुत हैं, लेकिन किसी एक श्लोक शब्द को प्रभुपाद उसी वक्त में इसके ऊपर भावार्थिक दिया। तो आज प्रभुपाद का मूड इसमें था कि परम दृष्टवा कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति परम दृष्टवा है, परम सुख कृष्ण भक्ति में मिलता है, परम सुख मिलता है तो तुच्छ सुखों को आदमी अपने आप त्याग देता है, फिर उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ते। इसलिए ऐसे भी दिखा है फिर तो भूख मरने की जरूरत नहीं है, निराहार की जरूरत नहीं है, महाप्रसाद खाते हुए भी भगवान इंद्रिय तृप्ति से बच सकते हैं। वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वो नकारात्मक है, खाना नहीं खाएंगे तो इंद्रिया स्थिर हो जाएंगे, वो नकारात्मक है। कृष्ण भक्ति के द्वारा इंद्रिया संतुष्ट हो जाएगी, ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव। ठीक है साधु, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो कल फिर एक कोई अध्याय लेके पूरा करें, तो हमारे पास है 5-6 दिन बाकी है, तो कौन सा अध्याय, एक कोई भी छोटा अध्याय जिसमें सबकी रुचि हो। बारवा, चलो बारवा आज छोटा 20 श्लोक का है, प्रयास करेंगे 6 दिन में, प्रयास में कल क्लास मंदिर में, तो कल का क्लास देंगे 11वें अध्याय का लास्ट श्लोक, क्योंकि वो भक्ति का सूत्र है, 12वां अध्याय शुरू होता है उस श्लोक के आधार पे। मत कर्मा प्रण मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, 11 का लास्ट श्लोक। इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, ये भक्ति का सूत्र है, फिर इसके बाद भक्ति का, भक्ति योग वाला, तो उसका हम ये करेंगे हमारे प्रणाली शिक्षा की रोज की। पहले ये जो जो वंदना है ये कर फिर 12वां अध्याय पूरा सब पढ़ेंगे साथ एक बार, तो 6 दिन रोज पढ़ते रहेंगे तो उसका अभ्यास हो जाएगा, और फिर श्लोकों का अर्थ करके प्रभुपाद के दृष्टिकोण समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। सर फिर मेहमान भी आएंगे, उनको देखना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। कल का वो तो मंदिर वाला एक ही है बोलते, वही उसी को तो उसी श्लोक के ऊपर कल बोलेंगे मत का। देखिए आप प्रभुपाद का भाव बहुत बड़ा है श्लोक के ऊपर, 11वां तो आप पढ़ के आइएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। मत कर्म किन बनमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समेति पांडव है कुछ। ठीक है,
अरे हाँ यार, वो जो उसकी आत्मा यहाँ आ जाएगी।